بابا نے ہم سبھی کو ہماری مول استھتی پر لے جانے کے لیے اسمرتیاں دلائی ہیں، تو آج ہم چرچا کریں گے بابا نے ہمیں کیا کیا اسمرتیاں دلائی، اور یدی ہمیں وہ اچھی طرح یاد آ جاتا ہے تو ہمیں کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم سبھی نے پورا کلپ پاس کیا، کتنے جنم لیے؟ پہلے دو یوگ کیا تھے ہم سبھی؟ تو وہ سارے سنسکار ہمارے اندر ہیں، وہ دب گئے ہیں، چھپ گئے ہیں، انہیں اگر پرگٹ کر لیا جائے، ایمرج کر دیا جائے تو پرسارتھ کی ساری کٹھنائیاں سماپت ہو جاتی ہیں۔ تو اب ہم امپورٹنٹ اسمرتیاں یاد کریں گے، بابا نے ہمیں اسمرتیاں دلائی، اسمرتیاں ارتھات کچھ یاد دلایا۔ تم یہ تھے، پاسٹ کا بھی یاد دلایا اور سنگم یوگ کا بھی، پچھلے سنگم یوگ کا بھی بہت کچھ یاد دلایا، ستیوگ تریتا کا اور پچھلے سنگم یوگ کا۔ تو ہم شروع کریں گے، سب سے پہلے کیا یاد دلایا بولو؟ ایک ایک ہاتھ اٹھائے اور اتر دے۔ اچھا، آپ نے سب سے چھوٹا کام بتا دیا۔ بابا نے ہمیں یاد دلایا تم یہ شریر نہیں ہو، آتما ہو۔ پرنتو اور بھی بہت کچھ یاد دلایا اس میں، کون سی آتما ہو؟ اب بہت ساری باتیں آ گئی اس میں، تم کون سی آتما ہو؟ ہم چلتے چلتے، جنم لیتے لیتے، اترتے چڑھتے، گرتے پڑتے، ہار جیت کرتے کرتے کیا ہوا؟ سب بھول گئے اور اپنے کو بالکل سادھارن، شکتیہین، پاپوں سے جکڑے ہوئے، جن میں کوئی گن نہیں، ایسا مان لیا تھا۔ بابا نے آتے یاد دلایا تم دیو کل کی مہان آتمائیں ہو۔ آیا یاد سبھی کو؟ کس کو یاد نہیں آیا، ذرا ہاتھ اٹھائیں گے؟ دیو کل کی مہان آتمائیں ہو، بہت بڑی چیز یاد دلائی۔ ہماری سبھیتا دیو سبھیتا ہے، دیوتا تھے ہم۔ اپنے کئی جنموں کے چہروں کو ہم دیکھیں، کتنی دیویتا، کتنی پویترتا، نرملتا، سرو گن، لمبا کال ہمارے جیون میں رہے۔ کل پہلے کی بابا نے یاد دلائی، بولو اب کل پہلے کی کیا کیا یاد دلائی؟ عمرین بولو، کون ہو تم؟ کلپ کلپ کے وجئی رتن ہو تم، یہ کیوں یاد دلایا؟ کیا ضرورت پڑی یہ یاد دلانے کی؟ بولو بولو، چنتن کرنا ہے سب کو، ہے پھر سے وجئی بن جائیں، کیونکہ مایا سے ہماری یدھ ہے، اور بابا جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مایا سے لڑنے کی ہمت یہ نہیں کر رہے ہیں۔ جس نے بار بار ہرایا ہو اسے لڑنے کی طاقت بھی نہیں رہتی، پہلے ہاتھ جوڑ دیتے، بھائی ان سے تو ہم ہار گئے ہیں۔ تو مایا سے بار بار ہارے ہیں، تو بابا دیکھتے ہیں کہ ان میں مایا کو جیتنے کی نہ شکتی رہی نہ ہمت رہی۔ تو یہ یاد دلا کر تم نے کلپ کلپ مایا کو جیتا ہے، ہماری جیت کی شکتی کو ایمرج کرا دیا۔ सभी ध्यान दें इस बात पर। ये बहुत सुंदर बात है, बड़ी गहरी बात है कि हम जो जीतने का साहस नहीं कर पा रहे थे, जीतने की शक्ति हमारे अंदर थी। सभी ध्यान दें इस बात पर, हम केवल क्लास नहीं करना चाहते, आज डीप फीलिंग में चलें। माया को जीतने की शक्ति हमारे पास है। बाबा ने याद दिलाकर उसे इमर्ज कर दिया, तुम विजयी हो, उठो, माया तुमसे कमजोर है। भले मुरलियों में ये भी कहा, माया भी बहुत पावरफुल है। वो इसलिए कहा कि इस युद्ध में हम जरा बहादुरी से लड़ें, माया को कमजोर समझ के ढीले न पड़ जाएं। कभी कभी दुश्मन को कमजोर समझ के एक सेना ढीली पड़ जाए तो हार सकती है। इसलिए सावधान किया, माया भी बहुत पावरफुल है। दो समान योद्धाओं का ही युद्ध होता है ना? ऐसा नहीं एक बहुत कमजोर हो और दूसरा बहुत पावरफुल हो। ऐसा आजकल बॉक्सिंग में, कुश्तियों में, खेलों में ये सब नहीं होता, समान। तो हम विजयी रतन हैं, सभी ध्यान देंगे। अगर हम इस नशे में आ जाएं, मैं विजयी रतन हूं, तो क्या होगा? क्या होगा? माया पर विजय होने लगेगी। याद रखें इसको, ये बहुत सुंदर बात है। नहीं तो लोग क्या कह देते हैं, गृहस्थ में रहने वालों को खास कह देते हैं, अरे तुम माया को जीतोगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी भी हार मान गए, तुम कहाँ जीतोगे। और ऐसा सुनकर कई कमजोर गृहस्थी पहले ही हार मान लेते हैं कि ठीक है, तुमने जो कहा हो सत्य वचन महाराज, हम नहीं जीतेंगे। और बाबा ने क्या कहा, तुम विजयी रतन हो। दूसरी बहुत बड़ी याद दिलाई हमारे देव स्वरूप की। हम ध्यान दें इस बात पर, जैसे बाबा को नशा था अपने भविष्य का, क्या बनूंगा मैं जाकर, बोलो पीछे की माताएं बोले, बाबा को नशा था ना, बाबा कहा करते थे भविष्य का स्वरूप, शरीर वस्त्र की तरह जैसे बाबा के सामने खूंटी पर टंगा है, ये वस्त्र उतारा, ये पहना, बस ये उतारना है, ये पहनना है, इतनी देरी है। उस नशे से क्या हुआ, बाबा के जीवन में देवताई संस्कार फटाफट आ गए। जिनको अपने जीवन में अपने देव संस्कारों को जल्दी जल्दी लाना है, वो अपने देव स्वरूप को याद किया करें। बाबा मुरलियों में बहुत बार हमारे देव स्वरूप की हमें याद दिलाते हैं, अव्यक्त मुरलियों में भी और साकार में तो बहुत याद दिलाते हैं। तो जब हम सभी रोज मुरली सुने तो सभी ध्यान देंगे, मुरली सुनते हुए जो जो बाबा हमें याद दिलाए हम वहाँ वहाँ पहुँचा करें। केवल सुन न लें, तुम देवी देवता थे, हमारा मन कहेगा ये तो हम रोज जानते ही हैं, इसमें कौन सी बात बता दी बाबा ने। मुरली गौर कर सकती है आपको, लेकिन जैसे ही बाबा ने कहा बच्चे तुम 2500 साल देवता थे, आज भी था ना, हिंदू धर्म नहीं देवी देवता धर्म था तुम्हारा, तो हम देव स्वरूप में पहुंचे तुरंत। 5-7 सेकंडों के लिए भी अपने उस श्रेष्ठ स्वरूप में पहुंचे तो मुरली का आनंद कुछ और होगा। मुरली रोज बहुत बड़ा सुख देने वाली हो जाएगी। हमें लगेगा मुरली सुनकर आए, 1/4 घंटा मुश्किल से हम यहाँ बैठते हैं, तो हमारा 1/4 घंटा या 1 घंटा हमारे लिए बहुत बहुत कल्याणकारी हो गया। और क्या याद दिलाया बाबा ने हमें? चलो भाई बताओ, इंद्र प्रताप कुछ याद दिलाया आपको बाबा ने? देखते ही याद दिलाया, तुम इस जहान के नूर हो, ये स्वमान की बात भी बहुत अच्छी याद दिलाई। बहने बताएं और क्या याद दिलाया? आप तो ऐसे बैठे जैसे आपको कुछ याद नहीं दिलाया हैं? धरती के सितारे हो और तुम शिव शक्तियां हो और तुम भक्तों के नहीं सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो। तो एक और बहुत अच्छी चीज याद दिलाई जो रोज याद दिलाते रहते हैं मुरलियों में लगभग, तुम्हारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, अब घर जाने से पहले दो बातें और जोड़ ले इसमें, बाबा सुनाते हैं वो भी। तुम्हारा 84 जन्मों का ये खेल पूरा हुआ, जो कुछ इन आंखों से देखते हो उसे यहीं छोड़कर वापस जाना है। एक बात, उसे यहीं छोड़कर वापस जाना है, और दूसरी बात कैसे बनकर जाना है? जैसे आए थे संपूर्ण भरपूर वैसे ही बनकर जाना है। करते हैं इसमें कभी विचार, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ इन आंखों से दिखता है, उसको यहीं छोड़कर जाना है। तैयार होंगे ऐसा करने के लिए, या सब कुछ लेके चलें, बच्चों को भी साथ लेके चलें, बहुत अच्छा मकान है हमारा उसे भी साथ लेकर चलें, बहुत माल अंदर है हमारे पास उसे कैसे छोड़ दें? माताएं क्या कहेंगी, लेकर जाएंगी या छोड़ के? छोड़ना सहज होगा या कठिन? पीछे वालों ने कुछ भी नहीं बोला, आगे वालों का सुन रहे हैं। छोड़ना सहज होगा या कठिन? सहज किने होगा? दो बातें देखो, ये बात भी बाबा मुरलियों में सुनाते हैं, ध्यान दें इन पर। जिन्होंने अपना सब कुछ पहले ही बाबा के हवाले कर दिया होगा, सब कुछ तुम्हारा, उनका कुछ विनाश होगा ही नहीं, पीछे मुरली चली। बाबा तो भक्ति में भी जो कुछ तुमने इंश्योर किया, इंश्योर माना भगवान के नाम से जो कुछ तुमने दिया उसको भी रिटर्न करता है बहुत गुना करके। तो जिन्होंने सच्चे दिल से कर दिया होगा, बाबा सब कुछ तुम्हारा, बच्चे भी तुम्हारे, धन संपत्ति मकान दुकान सब तुम्हारा, वो बहुत सुखी रहेंगे। एक बात, इस पर सभी ध्यान दें। दूसरा, जिन्हें ये नशा रहेगा कि छोड़ तो रहे हैं हम बहुत थोड़ा, और मिलेगा उससे कितना गुना है, पदम गुना, शायद मैथमेटिक्स होगा ही नहीं वैसा किसी के पास के उसकी कोई गणना की जा सके। बाबा ने कहा था पीछे, जितना सारा मुंबई में धन है ना, उतना तो तुम्हारे महल में एक हीरा जड़ा होगा, बस एक मोटा सा, जिसकी चमक इतनी ज्यादा होगी कि सारे बॉम्बे वाले उसकी ओर आकर्षित हो जाएं, अगर अब वो हो तो। अथाह धन संपदा होगी, स्थूल भी। देखिए मनुष्य थोड़ी चीज को तुरंत छोड़ देता है अगर ज्यादा माल मिल रहा हो, और हमें जो कुछ मिलने वाला है वो तो अथाह है, जिसकी गिनती नहीं होगी। सोचे कैसे दुनिया में बाबा हमें ले जा रहा है। आज बाबा ने कहा, तुम्हें बाबा को कितना प्यार करना चाहिए, कितना उसे याद करना चाहिए, जो दो युग तक तुम्हारे द्वयुग के लिए सभी दुख दूर कर देता है। सोचने की बात है, भाई लोग बैठे हैं यहाँ, सारा दिन कमाने की कितनी चिंता रहती है, होता है या नहीं? बिजनेस है तो भाई इतना मिला, इतना कम रह गया, इतना होना चाहिए था, उसने नहीं दिया, उसने नहीं लिया, कितना संघर्ष है मन का, और दो युग तक कमाना ही नहीं पड़ेगा। सोच के देखो जरा, 2500 साल तक कमाना ही नहीं पड़ेगा, कितना सुख देता है बाबा। सोचते हैं कभी ऐसा, थोड़ा थोड़ा कमाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है आज मनुष्य, अपने एक परिवार को चलाने के लिए रात दिन उसे मेहनत करनी पड़ती है। बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में आप जाकर देखें तो बहुत बच्चों को बहुत दिन तक ये पता नहीं चलता उनका बाप कौन है। पता क्यों? वो सवेरे ही चले जाते हैं, पूना नौकरी करनी है, सवेरे उठ के चले जाते हैं, बच्चे बाद में उठते हैं, और वो आते तब हैं जब बच्चे सो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। देखो, एक परिवार को पालने के लिए जीवन का सुख ही खत्म है। आना जाना भी कैसे कैसे, अब महानगरों में देखो तो, मैं तो जाता हूँ तो बाबा को थैंक्स देता हूँ कि आपने हमें ज्ञान सरोवर में कितनी सुंदर जगह रखा है, जहाँ बीड़ी सिगरेट का धुआं भी नहीं है, जहाँ कितना सुखद है, गर्मी पसीना, कितना बुरा हाल लोगों का रहता है। तो बाबा हमें दो युग सभी दुखों से झंझटों से मुक्त कर देता है। सोचो उस दुनिया के बारे में जिसमें न कोई समस्या होगी, न किसी का कोई झगड़ा होगा, न कुछ ऐसा वैसा सोचने की मार्जिन होगी, न कोई डॉक्टर होगा, न पुलिस, न कोर्ट, कुछ करना ही नहीं, सब कुछ यहाँ कर लिया हमने। कितना बड़ा रिटर्न देता है बाबा कि जिन्होंने उसके कार्यों में सहयोग दिया, जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र बना लिया और जिन्होंने योग अभ्यास किया, उनको थोड़े से का पथाव हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा सुख देने वाला बाबा हमारे साथ है। तो उसने कहा सब कुछ छोड़कर जाना है, जिसे भविष्य का नशा होगा उसे यहाँ का थोड़ा कुछ छोड़ना कुछ भी नहीं लगेगा, सहज भाव से हो जाएगा। तो बाबा हमें याद दिलाते हैं, अगर हमें ये याद रहे कि हमें घर जाना है तो क्या क्या होगा, क्या होगा? यहाँ से बुद्धि निकली रहेगी, बुद्धि यहाँ से निकली रहेगी, वैराग्य होगा, लेकिन वैराग्य भी बड़ा सुखदायी होगा। सूखा वैराग्य नहीं कि हम काम ही ना करें, ऐसा वैराग्य नहीं कि परिवार कोई ना देखें, ऐसा वैराग्य नहीं कि बच्चे पढ़ाई ना पढ़ें, माताओं को ऐसा वैराग्य नहीं कि भोजन क्या बनाना, घर जाना है, ऐसा वैराग्य नहीं, सुखद वैराग्य, सुख देने वाला वैराग्य, जिसमें आत्मा अपने को तृप्त होने का अनुभव करती है। और इससे क्या होगा, देखिए आज भी मुरली में बहुत अच्छी बात आई थी, वरदान में था ना, याद है, विनाश काल में बहुत पेपर्स आएंगे, उनमें सहज विजयी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए, लाइट, लाइट, देह भी लाइट। तो जितनी हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी, परिस्थितियां हमारे पास आएंगी ही नहीं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत इस सृष्टि का हमें सदा के लिए याद रखना है। सुना माताओं ने? नहीं सुना बहुतों ने, बोलो क्या बोला, स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां नहीं आएंगी, इसको पक्का कर दो। स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। बाबा के कुछ महावाक्य बहुत सार भरे हुए हैं, जैसे एक बहुत सुंदर महावाक्य है, अगर तुम्हारी स्थिति अचल अडोल रहे तो इस अचल अडोल स्थिति के सिंहासन के नीचे सभी समस्याएं दबकर नष्ट हो जाएंगी। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझना भी जरा सबके बस का नहीं है। सुना सभी ने, अगर स्थिति अचल अडोल रहे तो सारी परिस्थिति और समस्याएं इस स्थिति के आसन के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। तो सभी को ध्यान देना है, ये जो बहुत श्रेष्ठ स्मृतियां बाबा ने हम सबको दिलाई है, हमें कितनी याद आई। बाबा ने याद दिलाया, और याद आया ही ना हो, मोटा मोटा याद आया हो कि हाँ लगता तो है कुछ था, हैं? कोई 10 साल पहले की बात याद दिलाए, हम क्या कहते हैं, कुछ कुछ याद आ रहा है, याद आ नहीं रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक बहुत अच्छी फीलिंग की ओर। बाबा ने हमें याद दिलाया, तुम इस सृष्टि की महान आत्माएं हो, हो कौन कौन है, हाथ उठाना जरा, देखो महान आत्माओं के दर्शन। वाह, मुझे सबसे ज्यादा दर्शन हो रहे, आप तो एक दो को देखेंगे। मैं महान आत्मा हूं, अगर हमें ये नशा हो जाए, अगर हमारा अंतर मन इस सत्य को स्वीकार कर ले, कौन हूं मैं, तो हमारे अंदर छुपी हुई दबी हुई मान्यताएं जागृत हो जाएंगी। हमें मान्यताओं को जीवन में लाने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ये ऐसा सूक्ष्म रहस्य है। तो मैं आपको मान्यताओं की कुछ बातें याद दिला देता हूँ। मुझे जो बातें बहुत प्रिय लगती हैं बाबा की, जो मैं याद करता हूँ और आप भी उन्हें याद किया करें, बहुत साल पहले की बात है, ओम शांति भवन ही था तब, ज्ञान सरोवर नहीं, तो बाबा की मुरली चल रही थी। बाबा सुना रहे थे कि बच्चे तुम परमात्म पालना में पल रहे हो, अपने भाग्य को देखो, रोज सवेरे बाप आकर तुम्हें जगाता है, देखते चलो अपना भाग्य, उसके बाद आकर मुरली सुनाता है, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता है, रात को आकर सुलाता है ये बात या ऐसे ही बाबा कहता है सच्ची है। और बाबा ने कहा, अगर कोई बच्चा दुख में आंसू बहाए तो बाबा उसके आकर आंसू पहुंचता है, माताओं के तो पहुंचता ही होगा, भाई तो कम रोते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अगर दुनिया के लोग सुने तो क्या कहेंगे, इनके लिए भगवान खाली बैठा है क्या, उसे और कोई काम नहीं रहा सृष्टि का। और बाबा ने उत्तर दिया, तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। सोचो कितने महान हैं हम सब, जिनकी पालना करने के लिए, जिनको मदद करने के लिए भगवान खाली बैठा है। भक्ति में तो क्या करते रहे, भगवान सुनता ही नहीं, हुआ या नहीं, चिल्ला चिल्ला के भी थक गए, बहरा हुआ खुदा है, कबीर ने भी कह दिया, बहुतों ने मान लिया भगवान बहरा हो गया, सुनता नहीं, और अब सुनने से पहले ही दौड़ाता है। जैसे माताओं के लिए है ये बात, किसी माता का कोई बच्चा थोड़ा सा बीमार हो, और माता रात को सोई हो और बच्चा भूल से भी कह दे मम्मी, तो क्या होगा? माताएं बताओ, उठ के भागी जाएगी ना, क्या हुआ, होगा या नहीं? ये माताएं कहेंगे सो जा चुपचाप वहीं, क्यों नींद खराब की? नहीं ना, फटाफट भागी जाएंगी। और बाबा तो हमसे कितना प्यार करता है, यहाँ का प्यार तो बहुत छोटा है, वो तो वैसे भी प्यार का सागर है। हम जरा सा कहें ना बाबा, और वो मम्मी क्या करेगी, तुरंत दौड़ी चली आएगी। हम इस सत्य को रियलाइज करें, ये हमारा श्रेष्ठ भाग्य है, ये महानता भी है हमारे भाग्य की। दूसरी बात आपको सुनाऊं, बाबा ने कहा तुम इस जहान के नूर हो। इसका अर्थ सुन लें सभी, ये स्वमान की बात बहुत साल से आती नहीं है, मास्टर सर्वशक्तिवान की ज्यादा आती है। एक समय था बहुत साल पहले जब ये बात बहुत आया करती थी, नशा चढ़ाते थे बाबा तुम पहचानो तुम साधारण नहीं हो। तो क्या कहते थे सुने ध्यान से, बहुत नशा चढ़ता था, आपको भी नशा चढ़ेगा आज। बाबा कहते थे अगर किसी मनुष्य की आंखों में नूर न हो, नूर माना लाइट, तो वो मनुष्य अंधा होगा ना, उसके लिए जैसे संसार है ही नहीं, ऐसे ही तुम जहान के नूर हो, जहान की लाइट हो। अगर तुम इस जहान में न होते तो ये जहान जहान न रहता, वीरान बन जाता। वीरान समझते हैं, रेगिस्तान। तुम्हारे कारण ये जहान जहान है, अन्यथा ये वीरान बन जाता। क्योंकि देवकुल की मान आत्माएं हम सब हैं, हमारी प्योरिटी, हमारी नैतिकता, हमारा चरित्र, हमारे पुण्य कर्म संसार में मानवता को जीवित रखते हैं। अगर ये न हो संसार में, पुण्य न हो, पवित्रता नष्ट हो जाए, कुछ महान आत्माएं यहां बचे ही नहीं, तो ये संसार दानवों का संसार बन जाए ना, राक्षसों की दुनिया बन जाए। लेकिन हमारी उपस्थिति है, हो गए ना महान। हम सभी बहुत महान हैं। माताएं भाई सभी ध्यान दें, जिस घर में एक महान आत्मा रहती हो वो घर क्या बन जाएगा, सोचो। जिस घर में एक इष्ट देवी रहती हो वो घर क्या बन जाएगा, तीर्थ बन जाएगा ना। एक एक बड़े तीर्थ पे एक देवी होती है, और एक घर में देवी रहती हो तो, लेकिन कमी कहां पड़ रही है, ये नशा कम रहता है कि मैं इष्ट देवी हूं, मैं महान आत्मा हूं, तो वैसे वाइब्रेशंस फैलते नहीं। आप करके देखें अपने अपने घरों में, ये दो स्वमान ले लें, मैं एक महान आत्मा, इष्ट देवी, इष्ट देव, आपके घर के वाइब्रेशंस पावरफुल हो जाएंगे। तीसरी बात सुने आप, तीसरी बात भी बहुत गुह्य है, बहुत सुंदर है, वो भी पहले बाबा बताया करते थे। तुम इस संसार के आधार मूर्त हो, कल्प वृक्ष की जड़ें हो, जड़ें मास्टर बीज हो, बीज से बाबा तुम जड़ें, जड़ों के द्वारा पेड़ को क्या जाता है, सब कुछ। जड़ काट दी जाए तो पेड़ सूख जाएगा। जड़ों के द्वारा पानी भी जाता है, भोजन खाद सब जड़ों के द्वारा जाता है। तो बाबा रियलाइज कराते रहे तुम जड़ें हो, तुम्हारे द्वारा संपूर्ण कल्प वृक्ष को शक्तियां जा रही हैं, पवित्रता जा रही है, पुण्य कर्मों का बल पहुंच रहा है। तुम खुश रहोगे तो सारा जहान खुश होगा, और जड़ें रोने लगी तो क्या होगा, सारा कल्प वृक्ष सिर होने लगेगा ना, जड़े हिल जाए तो कल्प वृक्ष हिल जाएगा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई ना महान, साधारण नहीं बहुत महान है। तो बाबा एक बात इसी संबंध में कहते, तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है, पुण्य कर्मों का बल। और महानता ये हमारी, ध्यान दें सभी, हम पुण्य कर्म करेंगे और उसका बल मिलेगा संसार की सभी धर्मों की आत्माओं को, इसलिए उसका फल भी हमें बहुत गुना मिल जाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम सभी महान हो गए, हम अपनी प्राप्तियों को याद रखा करें, दो चार पांच प्राप्तियों को याद रखें, ज्यादा भी नहीं। तो सबसे बड़ी और पहली प्राप्ति कौन सी है हमें, ये हमें ये रोज याद रखना चाहिए, करना चाहिए। पहली और बड़ी प्राप्ति, संसार में सबसे बड़ी, चारों युगों में सबसे बड़ी, बोलो, भगवान मिला। सुनते ही लोग या तो देखने लगते हैं कि इनका दिमाग तो ठीक है, क्या कह रहे हैं ये, या सोचते हैं इनको किसी ने बहका दिया, भोली भोली माता है ना, भगवान भला किसी को मिलता है कैसे। लेकिन वो बाप है, तो बाप अपने बच्चों को नहीं मिलेगा तो किनको मिलेगा, सोचने की बात है। जब वो हमारा परम पिता है तो पिता और पुत्र का, बच्चों का मिलन ही ना हो तो वो बाप कैसा, क्योंकि लोग उसे जान नहीं पाए तो सोच लिया वो मिलता भी नहीं है। मिलता है तब तो उससे मिलने की इच्छा होती है ना। तो सबसे बड़ी हमारी प्राप्ति और यही सबसे बड़ी महानता, दूसरा इसी में जोड़ दें, केवल भगवान मिला ही नहीं, हमारा हो गया, हमारा हो गया। और कितना बड़ा अधिकार हो गया कि जो कुछ उसका है वो सब, कितनी बड़ी चीज हो गई अधिकार। इसलिए बाबा कहा करते, बाप को अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध लो। अब ये बांधने की कला स्वयं सीखनी है। भगवान पर हमारा अधिकार, प्यार तो भक्तों का भी रहा पर अधिकार नहीं। फील करें सभी, वो हमारा है, उस पर हमारा अधिकार। और आगे चलें इसी बारे में, कितनी बड़ी प्राप्ति हो गई कि भगवान पढ़ाने आता है, छोटी बात नहीं है। हम तो रोज मुरली सुन लेते हैं, लेकिन कितनी बड़ी बात हो गई, जो रहस्य वेदों में, दर्शनों में, शास्त्रों में, पुराणों में पता नहीं चले, बाबा ने एक एक लाइन में बता दिए। ऐसे ऐसे रहस्य हैं, माताओं को तो उनके बारे में ख्याल नहीं होता, अच्छे अच्छे रहस्य जिन पर शास्त्रवादियों वादी लोग, विद्वान लोग शास्त्रार्थ करते आए और उनका उनको पता नहीं चला। देखो मुक्ति और मोक्ष हम सबके लिए छोटी सी बात, आत्मा अलग अलग सेक्शन में रहती है, हम सबके लिए छोटी सी बात। मनुष्य आत्मा पशु योनि में नहीं जाती, बहुत लोग कंफ्यूज होते थे कि क्या है, कहीं गड़बड़ तो है, अब पता चला जाते ही नहीं। बड़े बड़े रहस्य आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार हैं। इस एक बात की जानकारी न होने के कारण बहुत गड़बड़ रही, अनेक प्रश्नों के उत्तर ही नहीं दिए जा सके विद्वानों के द्वारा। तो बाबा ने छोटा छोटा सिंपल शब्दों में गुह्य ज्ञान दे दिया ना, अति गुह्य ज्ञान, और छोटी बातों के रूप में, सरल शब्दों में। सब माताएं, छोटे बच्चे भी समझ जाएं। छोटे बच्चे बताओ कहां से आए तुम, बोलो कहां से आए हो, ये इधर उधर देख रहे थे, तुम कहां से आई हो, तुम भी परम धाम से आई हो, और ये दोनों बताओ कहां से आए तुम। तो देखो हमारे पास कितना स्पष्ट नॉलेज के हम आत्माएं परम धाम से आई हैं, और यही रहस्य अगर आप शंकराचार्य से पूछो, सच तो ये है कि किसी को पता नहीं दुनिया में इसका मुक्ति धाम कहाँ है, मुक्त होकर हम कहाँ जाएंगे। इस बात में तो लोग लड़ते रहते हैं कि लीन हो जाएंगे, वापस आएंगे या नहीं आएंगे, पर कहाँ से ये कोई नहीं सोचता। लीन भी हो जाएंगे कहाँ जाकर, वापस लौटेंगे तो कहाँ से, जाएंगे तो कहाँ, किसी के पास इसका कोई ज्ञान नहीं था। तो है ना बहुत बड़ी प्राप्ति, संपूर्ण ज्ञान घर बैठे मिल गया। तो अपनी प्राप्तियों का नशा रहे, हम महान आत्माएं हैं ये स्मृति में आ जाए तो जीवन चमक उठेगा, बहुत सारी चीजें सरल हो जाएंगी। तो कामकाज करते हुए सभी सेवाधारी भाई बहने भी कामकाज करते हुए कल से ही, आज से, अभी से शुरू कर दो, मैं कौन, महान आत्मा, और मैं इष्ट देवी इष्ट देव हूँ। जितनी बार याद करेंगे आपके मन को विशेष एनर्जी प्राप्त होगी, आपके ब्रेन को विशेष एनर्जी प्राप्त होगी, और सारा दिन यदि आप कर लें 50 बार कर जाएं तो शाम तक मन की स्थिति आनंद से भरपूर हो जाएगी। तो कल से शुरू आज से ही करना है ताकि भूल न जाएं और इसका सुख प्राप्त करना है। ओम शांति।
हमारी हम किनारे।